Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa abdika wa ta'im. Allahumma kulli waliyyaka alhamdulillah min hasan salawatika alayhi wa ala ba'i fi hadhihi as-sa'ah wa kulli sa'ah. Waliyyan muhafidhan wa qa'idan wa nasiran wa daliyan wa a'inan. Hatta tasqinahum ardaka tawba'a wa tawba'a fi hadhihi as-sa'ah. Ayyuhal Muhammad wa ala Muhammad. قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه خداوند عالم قران مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو بالحکمه والموعظه الحسنه حکمت عقل اور دانائی کی باتوں کے ذریعے سے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لیکن واعظ و نصیحت کہ جس کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بہترین ہو خوبصورت ترین ہو اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو خب اس آیہ مجیدہ میں خداوند عالم نے اپنے راستے کی جانب دعوت دینے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ داعیا وہی پکارنا ہے اے نبی ہم نے آپ کو مبشر نذیر خبردار کرنے والا خوشخبری دینے والا بنایا ہدایت کرنے والا بنایا و داعیا الی اللہ باذنہ یعنی اللہ نے آپ کو اپنے راستے کی طرف کیا کرنے والا بنایا ہے دعوت دینے والا بنایا داعین اللہ ہے آپ کو ایسی شخصیت ایسا کردار ایسا اخلاق عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت سے خداوند عالم کے راستے کی جانب بلاتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی تعبیریں ملتی ہیں خود مثال کے طور پر زیارت اربعین امام حسن علیہ السلام ہیں فاعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالۃ وحیرۃ الضلالۃ فاعذر فی الدعاء یعنی امام حسن نے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے فاعذر فی الدعاء یعنی خداوند عالم نے خداوند عالم کے راستے کی طرف بلانے کے لیے امام حسین نے تمام حجتوں کو پورا کر دیا تمام عذر و بہانوں کو بالائے طاق رکھ دیا اپنے لیے بھی اور اپنے مخاطبین کے لیے بھی کہ جو ان کی بات سن رہے تھے خواہ وہ مدینے میں ہوں خواہ وہ مکے میں ہوں خواہ وہ سفر امام حسین میں ہوں جو مکے سے شروع ہوا مدینے سے شروع ہوا اور کربلا تک پہنچا یا وہ خواہ کربلا میں ہوں اس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام نے بلکہ یوں کہوں کہ خب اپنے سفر سے پہلے یعنی تقریباً 58 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے منا کے میدان میں کیونکہ معاویہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ تقریباً 60 ہجری میں ہوا ہے 2 سال پہلے 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے میدان منا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور جس میں صحابہ اکرام تابعین و تبع تابعین سے اور علماء سے خطاب کیا ہے کہ تمام بہانوں کو تمام ان اس تراشیوں کو امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت کھول کھول کے بیان کیا اور یہ کہا کہ تمہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی چاہیے اور اسی طرح زیارت جامع کبیرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو قرار دیا ہے یا اسی طرح سورہ انبیاء میں ہمیں نظر آتا ہے یا دوسری سورتوں میں نظر آتا ہے کہ وجعلہم ائمتن کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا ہم نے تو انہیں رہبر بنایا یأمرون بالمع وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں وہ کہنے کے مقصد یہ کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے خواہ وہ دعوت دینے والا وہ داعی الی الحق داعی الی الاسلام خواہ رسول اللہ کی ذات گرامی قدر ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی یا ان کی اتباع میں وہ علماء جو ان کے وارث قرار پائے ہیں. اس راستے کی طرف بلانے کے لیے خداوند عالم نے در حقیقت دو روشوں کو بیان کیا ہے, اور ان دو روشوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے در حقیقت اس ہدف اور اس مقصد کو بھی بیان کیا ہے کہ جو اس دعوت دینے کا لازمی نتیجہ ہے, یعنی کیوں دعوت دیں. خب آپ خواہران آپ بہنیں جو ہیں وہ بھی دوسروں کو دعوت دیتی ہیں. خب عام زندگی میں دیکھیں جب آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں تو یا اسے کال کرتی ہیں یا انسان اسے ایس ایم ایس کرتا ہے یا اسے ای میل کرتا ہے یا بالمشافہ جا کے ملاقات کرتا ہے. یعنی جب اسے دعوت دی جا رہی ہے یا کسی کے ذریعے سے آپ دعوت نامہ انویٹیشن کارڈ اس کے پاس پہنچاتے ہیں کہ یہ دعوت ہے اور آپ آئیے آپ ہمیں جوائن کیجئے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. یعنی اس دعوت کو اس دعوت نامے کو پہنچانے سے قبل آپ کچھ کام انجام دیتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کے تمام مقدمات کو فراہم کرتی ہیں کہ دعوت کہاں پر ہوگی, کس وقت ہوگی, کس تاریخ میں ہوگی, اس دن کیا ہوگا, تمام چیزیں. اگر اس میں طعام کا پذیرائی کا انتظام ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, یہ تمام چیزیں آپ اس میں شامل کرتی ہیں, سب مقدمات میں ہیں. اور جب یہ پلاننگ ہو جاتی ہے تو اس پلاننگ کے بعد آپ در حقیقت کیا کرتے ہیں, آپ لوگ اس کو حتمی شکل دیتے ہیں, اس کو فائنلائز کرتے ہیں کہ جناب اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, یہ وقت ہے, یہ تاریخ ہے, یہ دن ہے اور یہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ دعوت منعقد ہوگی. خب اب اس کے لیے ایک دعوت نامہ چھاپا آپ نے, یا ایس ایم ایس بنایا, یا کال کی, یا بالمشافہ جا کے ملاقات کی, اور دعوت نامہ اس تک پہنچ گیا. لیکن اس مقدمات کو فراہم کرنے سے لے کر اس پلاننگ سے لے کر اس کو حتمی صورت دینے سے لے کر اور اس مقررہ تاریخ تک اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے آپ در حقیقت ان تمام مقدمات پلاننگ اور اس کو فائنلائز کرنے سے زیادہ اس کو منعقد کرنے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو کچھ بھی ہم نے کام کیا ہے, جو کچھ بھی مقدمات فراہم کیے, جو کچھ بھی پلاننگ کیے, جو کچھ بھی حتمی صورت دی ہے, اس کو در حقیقت حتمی شکل دیتے ہوئے اس کو منعقد کیا جائے, برپا کیا جائے, یا اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اب اس کے لیے آپ جو ہیں ویسے ہی ماحول تیار کرتی ہیں. انسان جو ہے جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو پھر اسی گھر میں مجلس ہے تو مجلس کے حوالے سے گھر میں جو ہے وہ فرش اعلیٰ بچھایا جاتا ہے, چاندنی بھی چھائی جاتی ہے, کالا کپڑا لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر شادی کی اور خوشی کی محفل ہے, جشن کی محفل ہے, تو پھر اسی مناسبت سے انسان اپنے گھر کو آمادہ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ محفل منعقد ہوتی ہے, پھر جو افراد آتے ہیں آپ انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, اور یہ تمام سلسلے ہوتے ہیں. خب خداوند عالم کہہ رہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. خب مقصد کیا ہے آپ کا اس دعوت سے, آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تاکہ وہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو, آپ خوشیوں کا پیغام مجھ تک پہنچائیں. گھر میں شادی ہے, آپ نے اپنی فرینڈس کو بلایا ہے, آپ نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے, آپ نے اپنے عزیز اقربا کو بلایا ہے تاکہ وہ شریک ہوں. اور تقریب کو تقریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بدن قریب ہو جاتے ہیں. تقریب کو ہمارے گھر میں تقریب آپ تشریف لائیے گا. خب تقریب کا کیا معنی ہے؟ تقریب یعنی قریب کرنا, یعنی آپ نے اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, اہل محلہ کو, فرینڈس کو, کالج اور کالج کے ساتھیوں کو یا آفس کے کلیگس کو آپ نے کیا کیا, قریب کر لیا. جو سب دور دور تھے ایک گھر میں جمع کر لیا, اس کو کہتے ہیں تقریب. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مثلا آپ کے گھر کی مجلس میں شریک ہوں یا آپ کے جشن میں شریک ہوں, یہ جو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں اس میں شریک ہوں. خب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اگر دعوت دینے والے ہو اللہ کے راستے کی طرف, تو سب سے پہلے دیکھو کہ مقصد کیا ہے تمہارا. یعنی مقصد ہمیں خود علم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں دعوت دے رہے ہیں دوسروں کو. ادعو, پکارو, دعوت دو, الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو. کس چیز کے ذریعے سے؟ دو روشوں کے ذریعے سے، دو میتھڈ یہاں پر خداوند عالم نے بیان کیے، بالحکمہ حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ اور موعظۂ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ذریعے سے، صرف نصیحت کے ذریعے سے نہیں. ہو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے تم جو دعوت دے رہے ہو، یہ پروگرام، یہ محفل، یہ تقریب اللہ نے منعقد کی ہے، تم نے صرف دعوت دینی ہے، تم نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو آمادہ و تیار کرنا ہے کہ دعوت، اس کے اہداف اور مقاصد اور تمام چیزیں پہلے سے تیار ہیں، تم نے صرف روش اور طریقہ کار کا انتخاب کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک نیا سا پروگرام بنائیں اور کہیں گے جناب ہم اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، یعنی ہم نے سب کچھ آپ کے لیے بنا دیا ہے، ہدایت کر دی ہے، آپ نے صرف دعوت دینی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا، شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، خبردار کرنے والا بھی بنایا ہے، وداعین الی اللہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے آپ کو پروگرام دے رہے ہیں آپ نے صرف اس کو بیان کرنا ہے، آپ نے صرف روش اور طریقہ کار کو اور میتھڈ کو اپنانا ہے، اور داعین الی اللہ باذن ہی، اور اللہ کے راستے کی طرف اللہ ہی کی اجازت سے آپ نے دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت خداوند عالم نے یہ پروگرام ہمیں دے دیا ہے، کہا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے. اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کی جائے. یہ تربیت کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ اس آیت کے، اس آیت کے اس حصے سے جس میں کہا کہ ادعو الی سبیل ربک، رب یعنی تربیت کرنے والا یعنی پروردگار، صحیح، یعنی تم جو دعوت دے رہے ہو یہ اس خدا کے راستے کی طرف ہے جو تمہارا تربیت کرنے والا پروردگار ہے. خب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعویٰ دے رہے ہیں کہ جو تربیت کرنے والا ہے، لہذا مقصد بھی تربیت ہی ہے. یعنی خدا خود الی ربک، یعنی تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو تاکہ تم لوگوں کی تربیت کر سکو. خوب یہ دعوت دینا، جیسے میں نے کہا کہ دنیاوی دعوت ہوتی ہے، اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر آپ اس دعوت کو منعقد کرتے ہیں، اس کو برپا کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف در حقیقت دعوت دینی ہے اللہ کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو تمہارا پروردگار ہے، دو روشوں کے ذریعے سے. یہ دو روش بہت اہم ہیں، لیکن اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس کا ابلاغ کرنے کے لیے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے درگاہ خود ہمیں اس ہدف پر یقین ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب صبح سو کے اٹھیں اور دیکھا ایسا میں سے آگے جناب میٹنگ ہے، جناب کھڑے ہوئے اور چل دیے. نہیں، پتا ہو کہ ایجنڈا کیا ہے، کہاں پر ہے، کن نکات پہ گفتگو ہوگی، میں اپنے نکات کو، اپنے ذہن میں جو میرا جو ویژن ہے، یا میرے ذہن میں جو رائے ہے، یا جو میں پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں، وہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ اس پہ سراسر گفتگو کی جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دعوت دینی ہے تم نے، یہ جو تم نے بلانا ہے، یہ جو ابلاغ کرنا ہے، یہ جو تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہو تربیت کے لیے، تو خود تمہیں اس دعوت کی حقانیت اور حق ہونے پر یقین ہونا چاہیے. خب جب تک آپ کو حق نہیں ہوگا، جب تک آپ کو یقین حاصل نہیں ہوگا، جب تک اس کی حقانیت اور سچائی اور صداقت پر آپ کو ایمان نہیں ہوگا، آپ کا محق ہو. اب آپ مثال کے طور پر، اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی میٹنگ ہونی کہاں ہے، لیکن شاید یہاں پر ہو، شاید لائبریری میں ہوں، شاید ڈویژنل آفس میں ہوں، برادران کے ڈویژنل آفس میں، کہاں پر ہو. اب آپ نے دعوت تو دے دی لیکن خود آپ کو نہیں پتا کہ یہ پروگرام منعقد کا ہو رہا ہے. تو پہلے یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا صراط المستقیم کی طرف ہمیں گامزن رکھ، اس پہ ہدایت فرما ہماری. یہ دنیا کا واحد راستہ جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ پہ ختم ہوتا ہے. इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए, हमें अल्लाह ही की तरफ जाना है। हमारा आगाज और इब्तिदा अल्लाह है और हमारा अंजाम और इख्तिताम अल्लाह ही है। लिहाजा इसका यकीन होना चाहिए कि हम जिस रास्ते की तरफ बुला रहे हैं वो अल्लाह का रास्ता है। हमने सिर्फ रविश को और मेथड को अपनाना है हालात के तकाजों के मुताबिक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उस दावत पर और दावत की हक्कानियत पर यकीन होना चाहिए कि खुदावंद आलम ने ये दावत दी है, ये फरमाया कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत और अक्ल और दानाई की बातों के ज़रिए से और मौज़ हसना के ज़रिए से। लिहाजा इसका यकीन होना चाहिए, और जाहिर जब इंसान को ख़ुद यकीन होगा तो वो ख़ुद भी अमल करेगा और दूसरों को भी दावत देगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं रखती ताकत परवास मगर रखती है। खूब इसलिए कि जब इंसान के वजूद में रगो पै में उसके हिस्से हिस्से में उसके खून में उसके गोश पोश में ये अगर ख्याल आ जाए कि ये खुदा है, ये खुदा की दावत है, तो फिर इंसान अपने पूरे वजूद के साथ उसे कबूल करेगा और फिर पूरा वजूद उसका गवाही देगा। आप दुआ अरफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उठा के देखिए क्या फरमाते हैं, ए खुदा मैं गवाही देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु बिर्रुबूबियत, तेरी रुबूबियत की गवाही देता हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के नाम लेते हैं, हत्ता के इंसान के जिस्म के अंदर जो रगे हैं उन तक के नाम लेते हैं इमाम हुसैन। क्यों? अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा, मैं गवाही देता हूँ कि आप नूर थे असलाब ताहरा में और आप आला तरीन सुलबों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। यानी ऐसी अजीम हस्ती जब खुदा की वहदानियत की गवाही देती है, उसे यकीन होता है, तो फिर वो ये नहीं कहते खुदा मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद ला शरीक, तेरा कोई शरीक नहीं है और तू माबूद लम यजल है और न तेरे तुझसे पहले था न तुझसे कोई बाद है और तू ही अव्वल है तू ही आखिर। नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के मुख्तलिफ आदा का नाम लेते हुए ये गवाही दे रहे हैं कि खुदावंदा मैं अपने जिस्म के साथ अपने रूह के साथ अपने हत्ता के अपनी जो पेशानी है इसमें जो लकीरें हैं इसका तस्करा करते हैं, अपने हाथों के पोरों का तस्करा करते हैं। यानी एक मुवाहिद इंसान है, खुदा परस इंसान की निशानी बता रहे कि किस तरह इंसान दर हकीकत खुदा की वहदानियत की गवाही दे। यानी उसका पूरा वजूद दर हकीकत खुदा को कबूल कर चुका हो। और यही वजह है कि छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, फरमाते हैं कि जो नौजवान कुरान के साथ नशे से बर्खास्त रखेगा तो कुरान उसके रगो पै में दाखिल हो जाएगा। यानी जब इंसान सिन बुलूग की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो उसको चाहिए कि कुरान से उन्स और उल्फत हासिल करे, ताकि ये कुरान, कुरान का नूर, कुरान की आयात दर हकीकत उसके रगो पै में, उसके वजूद में, उसकी रूह की गहराइयों में, उसके दिल में उतर जाएं। और फिर जाहिर बात है जब इंसान पर उसके खून, इसलिए कि आपको पता है कि फिजिक्स का लॉ है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर अगर यहाँ दो चीज़ें रखी हैं तो दोनों एक दूसरे पर असर कर रही होती हैं। खौ हमें उनका ये तआवुन और इश्तराक और एक्शन और रिएक्शन हमें नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिजिक्स का लॉ है कि दो चीज़ें अगर एक साथ हैं तो दोनों एक दूसरे पर असर करेंगी। ये हर चीज़ मिसाल के तौर पर हालत हरकत में है, मगर ये कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जी अप्लाई ना हो वो इसी तरह चलती रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स इस बात का सबब बनती है कि उसको रोका जाए। तो कहने का मकसद ये कि ये इंसान है और ये अल्लाह की दावत है, लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने अंदर कुरान से उन्स उल्फत हासिल कर लो तो फिर ये तुम्हारे खून में, रगो पै में, तुम्हारे वजूद की गहराइयों में रासूख और पुख्ता हो जाएगा। फिर ऐसा इंसान कुरानी इंसान होगा, जिसको इमाम हुसैन ने कहा तरबियत बायद कुरानी बाशद, यानी तरबियत को कुरानी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। खूब उन उसूलों की तरफ अब जितना भी वक्त बचा है उसमें आते हैं इंशाल्लाह, फिर मौका मिला तो इसकी तकमील करेंगे तो दर हकीकत यानी उस दावत का यकीन होना चाहिए, और उस दावत के यकीन करने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ईमान है। ईमान यानी दिल का यकीन, ईमान यानी दिल का यकीन, अपने हिजाब पे यकीन, अपनी इफ्फत पे यकीन, अपने पाक दामनी पे यकीन, अपने सिन्फ नाजुक होने का यकीन। खो बहरल वक्त के दामन गुंजाइश नहीं कि मैं सिन्फ नाजुक या इससे मरबूत नुकात को पेश करूं। खुदा ने क्यों औरत को सिन्फ नाजुक कहा है, क्यों हम औरतों को सिन्फ नाजुक कहते हैं, आखिर क्या वजह है? खूब ये जो आपने सुना कि लेडीज फर्स्ट कहते हैं ना, जब खवातीन जा रही होती तो कहते हैं पहले आप जाइए, क्यों कहते हैं हम? इसकी कोई ना कोई वजह होगी या नहीं होगी, है किसी के जहन में? जी बताइए। तो उसने कहते हैं आप पहले जाइए। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने, भाई अल्लाह ने अपनी बारगाह में पहले मर्द को बुलाया है या औरत को बुलाया है? जी औरत को बुलाया है, नहीं औरत को बुलाया है। खुदावंद आलम ने अपनी बारगाह में इबादत के लिए पहले किसको बुलाया है? 9 साल की उम्र में। इसलिए कहते हैं लेडीज फर्स्ट, आप समझ में आ गया? अल्लाह कह रहा है पहले लेडीज फर्स्ट, ठीक है ना? खूब यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर आपको पहले बुलाया है तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें नाकस अकल होती हैं, सही नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है कि उलिल अलबाब हैं, जो भी अल्लाह की बारगाह में गौर फिक्र करेगा जमीन आसमान की खलकत में, उलिल अलबाब है, साहिबान अक्ल व शऊर हैं वो, खा वो मर्द हों या औरत हों। दूसरी बात यह कि अल्लाह ने पहले खवातीन को बुलाया है। आपने देखा होगा ना फेसबुक पे लड़के जो हैं लड़कियों के खिलाफ तबलीगात कर रहे होते हैं, और लड़के जो हैं वो लड़कियों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ जंग होती है, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। एक फ्रांस के टीचर ने कहा कि ये बताइए कि लफ्ज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो मुजक्कर है या मुअन्नस है? तब बॉयज़ एंड गर्ल्स में जंग शुरू हो गई। एक कह रहा है कि नहीं ये मुजक्कर है, एक कह रही है मुअन्नस है। एक ने कहा सर ये जो है वो छोटी, एक लड़के ने कहा सर ये मुअन्नस है कंप्यूटर, फीमेल है। कहा क्यों? कह लेंगे ये छोटी छोटी बातों को जमा करके रखते हैं और जैसे ही कोई मसला आता है हैंग कर जाते हैं। और ख़वातीन भी ऐसी होती है, छोटी छोटी बातों को जमा करती हैं, अचानक उनका फ्यूज उड़ जाता है। या ख़वातीन ने कहा सर ये ऐसे होते हैं, ये हमेशा ये कर देते हैं वो कर देते हैं, ये जंग शुरू होती है। तो खुदावंद आलम ने अगर आपको बुलाया है अपनी बारगाह में और आपको ईमान और सिन्फ नाजुक और निस्वाना खसूसियत अता की हैं तो उसकी एक वजह है, तो इसका यकीन होना चाहिए। एक बात ये हो। अब आते हैं कि खुदा कह रहा है कि यकीन अगर नहीं होगा तो तुम अपने रब के रास्ते की तरफ दावत नहीं। वअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ लेकिन यकीन के साथ, अपने रब के रास्ते की तरफ यकीन, अपने रब की इबादत करो यकीन के साथ। वअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, यहां तक कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। इसलिए रसूल अकरम फरमाते हैं उबुदिल्लाह कअन्नका तराहु, ऐ बुज़र अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। फइन लम तराहु फइन्नहु यराका, अगर तुम उसे नहीं देख रहे लेकिन वो तो तुम्हें देख रहा है। यानी ये दो तरफा यकीन है कि मैं भी खुदा को देखूं और खुदा भी मुझे देखे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। दावत का यकीन होना चाहिए। अब आइए इस दावत की और भी खसूसियतों से सर्व नजर करते हुए दावत के रविश और मेथड पर खुदा कह रहा है उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिक्मा वल मौइज़तिल हसना, अक्लमंदी और दानाई की बातों के जरिए से और अच्छे वादो नसीहत के जरिए से। क्यों ये दो मेथड बयान किए? और भी इसमें नुकात हैं, आयत और भी कंटिन्यू है लेकिन मैं उसको यहाँ पर बयान नहीं कर रहा हूँ। वो जादिल हम बिल्लती है एहसन, और अगर किसी से कोई मनाजरा भी है, कोई इल्मी मुहैसा भी है या और कोई मसला है तो उसको अच्छे तरीके से अखलाक और किरदार के साथ उसको हल करने की कोशिश करो। लेकिन ये दो चीज़ें फ़िलहाल मेरे नज़र में हैं, जिन जितना भी वक्त बचा है मैं उसको आपकी समाअत की नज़र करता हूँ। बिल हिक्मा, अकल और दिल, दो मुख्तलिफ किस्म की ताबीरें इस्तेमाल की गई हैं। शहीद मुतहरी ने भी एक किताब है अक्ल व दिल, सुखन में एक चैप्टर है अक्ल व दिल के नाम से, उसको मुताला कीजिए। उसके अलावा कुरान फहमी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शहीद मुतहरी ने बहस की है दिल और अकल और दिमाग से मुतालिक कुछ ताबीरें इस्तेमाल की हैं और कुरान की रोशनी में उस पर बहस की है कि कुरान फहमी का ताल्लुक बाज़ोकात हम रूह कहते हैं, बाज़ोकात अकल कहते हैं, बाज़ोकात कल्ब कहते हैं, तो उस पर सैर हासिल गुफ्त एक अक्ल व दिल है और सुखन में, और एक है कुरान फहमी, छोटा सा 40-50 पेज की शायद किताब है, उसमें बहस की है शहीद मुतहरी ने। मैं उसको जिक्र करना नहीं चाहता, कहने ये चाहता हूँ कि इंसान के सोचने का, एनालाइज करने का, तफक्कुर का जो मरकज़ है वो उसकी अक्ल है, उसकी सोच है, वो उसका माइंड है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास माइंड हो उसके पास अकल भी हो, और जिसके पास अकल भी हो वो साहिब तफक्कुर और साहिब फिक्र भी हो। वाज़ेह बात, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास खोपड़ी भी हो, खोपड़ी के अंदर मगज़ भी हो, और अगर मगज़ भी हो तो सोचने और समझने की सलाहियत भी हो। अकल का हामिल होना और अकल को इस्तेमाल करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, ये हो गया। अब खुदा कह रहा है कि सोचने समझने का मरकज़ तुम्हारी अक्ल है और तुम्हारे एहसासात, जज्बात, फीलिंग्स का जो मरकज़ है वो तुम्हारा दिल है। खुशी, गम, एहसास, तवज्जो, तनफ़ुर, मोहब्बत, ये सब एहसासात और इनके असरात कहाँ पर मुनाकिस होते हैं? दिल पर मुनाकिस होते हैं। आप ही नहीं कहते मेरा दिमाग बहुत आज अफसरदा है, इंसान ये नहीं कहता, कहता मेरा दिल अफसरदा है। इंसान जो है वो दिल को मरकज बनाता। खुदा कह रही ये दो चीज़ें हैं कि जिन तक तुम्हें ये दावत हक पहुँचानी है, लिहाजा तुम्हारी रविश भी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो इन दो मरकजों को झंझोड़ सके। यही वजह हजरत इब्राहिम ने मिट्टी के बुत भी तोड़े हैं और जहनों में जमे हुए जमूद के फिक्र भी तोड़े हैं, फिक्रों का जमूद भी तोड़ा है। उन्होंने पत्थरों से तराशे हुए बुतों को भी पाश पाश किया है और दिलों में उन बुतों से मुतअल्लिक नरम गोशों को, उन एहसासात और जज्बात को जो इंसानों को बुतों की परस्तिश की तरफ रगबत दिलाते हैं, उनको भी पाश पाश किया है। यानी अकल के ज़रिए से भी और नसीहत और ऐसी बातों के ज़रिए से कि जिससे इंसान सोचने पर मजबूर हो। और बाज़ औक़ात होता है कि जिस तरह मसाइब में होता है, जब इंसान मसाइब पढ़ रहा होता है, बयान कर रहा होता है, तो बाज़ औक़ात एहसासाती जुमले बयान किए जाते हैं। चूँकि रोने का ताल्लुक एहसास से है और एहसास को जब तक उसको तंग नहीं किया जाएगा, जब तक उसको हिलाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक इंसान रोने के लिए आमादा नहीं होता। बहरहाल, तो खुदा कह रहा है हिकमत और मौजूदा हसना के जरिए से, लिहाजा आपकी रविश भी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए कि जिसमें आप सबसे पहले तो ये एनालाइज करें कि आप जिसको दावत दे रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, वो किस तरह का है, उसकी क्या नेचर है, ताकि ये ज़रूरी है ताकि आप उसको उसी तरीके से कंट्रोल कर सकें, दावत पहुंचा सकें। नफ्सियात में मसलन बहुत से लोग होते हैं समी होते हैं, यानी सिर्फ सुनने वाले होते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो सिर्फ देखने वाले होते हैं। बहुत से लोग होते हैं पुरजुम्बोजोश होते हैं, यानी हर वक्त हिलना जुलना, शैतानी उछल कूद ये होता है। लिहाजा उन अफराद को आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि, तो फिर उन्हीं की मोरद पसंद या मन पसंद मिसालों के ज़रिए से उन तक बात पहुँचाएं। कुछ लोग हैं जिनको साइंस की बातें, अकल की बातें, दानाई की बातें, मैथमेटिक्स की बातें या इस किस्म की दूसरी चीज़ों की बातें जो साइंस से मुताल्लिक हों, जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हों, उन बातों के ज़रिए से आप उसको दावत दें। या कुछ अफराद होते कि नहीं, वो अकल की बातों को इतने ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उनका दिल बहुत अच्छा होता है, उनका अखलाक बहुत अच्छा होता है, उनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, आप एक छोटे से शेर भी कहेंगे तो वो बहुत देर तक उस पर गौर करेंगे, वाह वाह करेंगे, लतीफ़ एहसास के मालिक होते हैं, लतीफ़ जज्बात के मालिक होते हैं, लिहाजा उनको उसी तरीके से दावत देनी चाहिए। यानी ये मेथड आपको आना चाहिए कि आप किस शख्स को किस तरीके, ऐसा नहीं हो जिसको शेर ही नहीं पसंद आप उसको शेर सुनाए जा रहे हैं, और जिसको अकल और साइंस की बातें नहीं पसंद आप उसको जो है ना वो अखबार जान से जो है ना वो जदीद टेक्नोलॉजी सुनाई जा रही हैं कि जनाब ये होता है वो होता है, तो वो चढ़ जाएगा वो, इसलिए कि जब उसकी पसंद की बातें नहीं होंगी तो खुदा कह रहा है कि रास्ते की तरफ दावत दो। इस दावत देने के लिए ख्वाब अकल को मरकज बनाना हो या उसके दिल को मरकज बनाना हो, अकल को मरकज बनाने के लिए हिकमत दानाई और अकल की बातों के जरिए से, और दिल को मरकज बनाने के लिए, दिल को मोरद तवज्जो करार देने के लिए वाज़ो नसीहत के जरिए से। और यही खुदा ने कहा वल मौइज़ातिल हसना, सिर्फ मौइज़ा नहीं कहा बल्कि ऐसा मौइज़ा, ऐसी नसीहत जो हसन हो, जो खूबसूरत हो, यानी जिसमें वक्त के तकाज़ों का ख्याल रखा गया हो। मुमकिन है कि आप एक साइंसी मिसाल बयान करना चाहते हैं, उसमें वक्त का तकाज़ा कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक साइंसी मिसाल बयान कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जो आपने किया या आपने देखा या आप के आपने सर्च किया और आपने कहा जनाब ऐसा होता है ऐसा होता है, वो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कोई इंसान के एहसास शामिल हों, लेकिन जब आप उसके दिल को मरकज तबलीग बनाएंगी कि मैं इसके दिल को, जिसको कुरान ने कहा बलाग मुबीन, क्या है दिलों तक बात पहुंचाना, यानी दिल इंसान का मुतवज्जो, उसके एहसासात झंझोड़े जाएं, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या है कि जब इंसान उसके दिल को मोरद तवज्जो करार दे और उसके दिल को तबलीग करे, तो फिर खुदा ने कहा वल मौइज़ातिल हसना, अच्छे वाज़ो नसीहत के तरीके से, अच्छे इस्तियारे, अच्छे ताबीरें, अच्छे अल्फाज, इनके जरिए से इंसान नसीहत करे ताकि उसका दिल पसीजे, उसका दिल सोचने पर मजबूर हो और उसके एहसासात में जलजला आए, उसके जज्बात में जुमूद और अगर कोई रुकावट है, ठहराव है, तो वो एक बेदारी में, तहर्रुक में और एक मुसलसल आगे बढ़ने में तब्दील हो। यही वजह है कि आप देखें इमाम खुमैनी की दावत, अगर आप देखें इनकलाब इस्लामी की, तो उसमें भी यही है कि इमाम खुमैनी ने दर हकीकत अकल की बातों के ज़रिए से भी और वाज़ो नसीहत के ज़रिए से भी दावत दी है। इनकलाब इस्लामी को इमाम खुमैनी ने किस तरह पहुँचाया है, इमाम खुमैनी ने किस तरह इस इस्लामी इनकलाब को पहुँचाया है, एक तरफ इमाम खुमैनी हमें उस तरह सियासी तौर पर नज़र आते हैं गुफ्तगू करते हुए अमरीका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, दुश्मनी दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़, इस्तेमार के ख़िलाफ़, कहते हैं खुमैनी की सबसे ज़्यादा जो सख्त तरीन तकरीर थी अमरीका के ख़िलाफ़ वो किन अफराद के सामने थी, आप तसव्वुर कर सकती हैं, वो कौम के नानवा यानी रोटी पकाने वाले, तंदूर वाले जब खुमैनी से मिलने गए थे, तो खुमैनी ने सबसे ज़्यादा सख्त तकरीर जो अपनी ज़िंदगी में की है, कहते हैं कि वो उन अफराद के सामने की थी। वही इमाम खुमैनी नज़र आते हैं, अगर आप चाहे हदीस उठा के पढ़िए तो उसमें एक बाप, एक मुअल्लिम, एक मुअल्लिम अखलाक, मुअल्लिम इरफान, एक तज़किया करने वाले इंसान, एक मेहरबान बाप की सूरत में हमें तबलीग करते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा हमें इन दोनों मरकज़ों को सामने रखना चाहिए, इसके तकाजों पे अमल करना चाहिए। और जब आप मिसाल के तौर पर तबलीग करें तो फिर जब आप पैगाम हक पहुँचाएँ तो सबसे पहली बात थी कि उसकी दावत पे यकीन हो, उसकी हक्कानियत पे यकीन हो, तरबियत के लिए हो, किसी की तोहिन व एहानत के लिए ना हो कि मैं इसको तबलीग करूँ जाके इसकी एहानत हो, ये डिग्रेड हो, ये फ़लाँ हो, ये फ़लाँ, नहीं, तरबियत के लिए हो। और फिर उसके लिए खुदावंद आलम ने कहा बिल हिकमा वल मौइज़ातिल हसना, कि उन रविशों में से दो रविश ये हैं कि अक्लमंदी और दानाई की बातों के ज़रिए से और मौज़ा हसना या अच्छे वाज़ो नसीहत के ज़रिए से। लिहाजा वो अफराद या वो गर्ल्स या वो तालिबात कि जिन तक आपका पैगाम नहीं पहुँचा, आप जाएँ और उन तक इन दो तरीकों के मुताबिक अपना पैगाम पहुँचाएँ, आईएसओ का पैगाम पहुँचाएँ, तालिबात शोब तालिबात का पैगाम पहुँचाएँ, ताकि वो अफराद जो आपसे दूर हैं, आपके और उनके दरमियान जो फासला है, आपकी तबलीग से, आपके किरदार से, आपके अमल से, आपके मेथड से वो फासला कम हो और वो आपके साथ शामिल हो। अगर शामिल नहीं भी होते, कम से कम उनके जज्बात, उनके एहसास, उनकी तवज्जो, उनकी हिमायत, उनकी ताईद आपके साथ शामिल हो। यानी अगर वो आपके साथ शामिल नहीं भी होते तो आपके मुखालिफ अफराद में शामिल ना हो, एक बात। दूसरी बात ये कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जिन शख्सियात के पास जाती हैं, जिन गर्ल्स के पास जाती हैं, जिन तालिबात के पास जाती हैं, उनसे प्यार मोहब्बत दोस्ती का सब इस्लाम जो है उन पर थोपने की कोशिश मत करें कि आप पहले दिन ही जो है मसलन उनसे ये कहें कि जनाब आपने जो है वो हुक्म खुदा बयान करना है। लेकिन हुक्म खुदा बयान करने के तरीक़े होते हैं। वो वाकई आपने सुना होगा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, उन्हें नया मुसलमान हुआ था, उसको कहा चलो सुबह की नमाज़, फिर जोहर की नमाज़ और फिर असर की नमाज़, फिर रोज़ा भी रखवा दिया, नमाज शब भी पढ़वा दी, पूरा दिन और रात जनाब उसका घर से बाहर मस्जिद में गुजरता था। तो उसने कहा भाई अगर ये इस्लाम है तो मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ नमाज रोज़े का होकर रह जाऊँ। खूब यानी उस शख्स ने उसकी अक्ल और अकली सलाहियत को मलूज़ खातिर नहीं रखा, जिसकी वजह से वो शख्स दोबारा इस्लाम से मुनहरिफ हो गया या उसने मसलन इबादत करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो हजम नहीं कर सका। लिहाजा प्यार मोहब्बत के ज़रिए से, दोस्ती के ज़रिए से, सब का सब इस्लाम नहीं थोपना है, प्यार मोहब्बत के ज़रिए से यानी एहसासात को जगाएं, झंझोड़ें, बेदार करें, ये आपकी सिफत होनी चाहिए। आपका अखलाक, आपका किरदार पहले ही मरहले पर जाकर जनाब विलायत फ़कीह ये होती है, विलायत फ़कीह वो होती है, वली अम्र ये होता है, फ़ौरन ही एक मसले को हल करने की कोशिश ना करें। जाएं, बैठें, देखें कि पानी किस रुख पे बह रहा है, कितना बहाव है, कितना तेज़ है। कहते हैं ना तेल देखो, तेल की धार देखो, उसको यही मतलब है कि जनाब पहले देखें कि ये जो सामने वाला जिसको मैं तबलीग कर रहा हूँ इसकी क्या सिफात हैं, इसकी क्या तवज्जो हैं, ये क्या सोच रहा है, उस सोच के मुताबिक आप उसको तबलीग करें। तीसरी बात ये कि जब आप तबलीग कर रही हैं, अपने मैसेज को पहुंचा रही हैं, तो उसको ग्रेजुअली फिर मुख्तलिफ स्टेप्स में तकसीम करें, मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम करें कि मुझे पहले मरहले पर यह गुफ्तगू करनी है, दूसरे मरहले पर यह गुफ्तगू करनी है, तीसरे मरहले पर यह गुफ्तगू करनी है, पहले तीन महीने मुझे इस नुक्ते पर दावत देनी है, दूसरे तीन महीने या दूसरे दो महीने या दूसरे एक महीने पर मुझे मिसाल के तौर पर मुझे फलां को ये तवज्जो दिलानी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसके दिल में जो शकों की शबात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हों, उसमें उन शकों की शबात को दूर होने के बाद उसमें पुख्तगी आएगी, वो रासिख होंगे, वो मुस्तहकम होंगे, पायदार होंगे, तब जाकर वो चीज़ सामने आएगी। इसी तरह चौथी चीज़ ये कि उस ताल्लुक़ को, उस राबते को, उस दोस्ती को जो आपने एक मकसद के लिए शुरू किया है, निसफ राह में मत छोड़ें, बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि आप ने जो साथ देना शुरू किया है किसी को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए। इसलिए हदीस में मिलता है कि अगर आप ईमान के बाला तरीन दर्जे पर हैं और आपका दोस्त आपसे निचले दर्जे पर है तो उसे छोड़ कर मत जाएँ, बल्कि उसका हाथ थामें और उसको अपनी सतह पर लेकर आएँ और फिर आगे कदम बढ़ाएं। जिस तरह इंसान होता है जब हाइकिंग कर रहा होता है, किसी पहाड़ी पर ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, तो जो आगे वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है, जब उसके कदम मजबूती से जम जाते हैं तो फिर वो नीचे वाले को उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ ले आता है। ईमान के लिए भी यही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप दूसरे शख्स को अपनी सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस सतह पर लाने से पहले उसके दिल में, उसके ज़हन व क़ल्ब में वो वसत और वो फिक्री जो लचक उसके दरमियान आ चुकी हो, ताकि वो आपकी बात को या उस दर्जे को या उस मरहले को कबूल कर सके या उसकी सख्ती को। बहरहाल जितना जितना इंसान ग्रेजुअली ऊपर जाता जाएगा, जमीन से फासला बढ़ता जाएगा और ऊंचाई में इजाफा होता रहेगा। लिहाजा ऐसा नहीं हो कि इंसान ऊंचाई पे तो जा रहा है लेकिन उसकी ज़र्फियत में इजाफा नहीं, पता चला उसने पीछे मुड़ के देखा मैं तो 50 फीट ऊपर आ गया हूँ, वहीं चकरा के गिर पड़ा। ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसमें माफ कीजिएगा कि उसमें एक फिक्री लचक पैदा हो चुकी है, पुख्तगी आ चुकी है, उसके लिए आपको ग्राउंड वर्क बनाना पड़ेगा ताकि उसकी जहनी सतह के मुताबिक उसकी तरबियत की जा सके। और बहरहाल और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मुख्तसर वक्त में मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो ये वो चीदा चीदा नुकात थे कि जो तरबियत और तबलीग हक से मुतालिक थे कि आप अपने मैसेज किस तरह पहुँचाते हैं, आप अपने हम फिक्र या हम ज़माना अफराद को, हम अहद अफराद को किस तरह अपने साथ अपने कारवां में शामिल करना चाहते हैं। तीसरी बात यह कि ये वो अय्याम हैं कि जो अय्याम जश्न व सुरूर हैं, अय्याम इनकलाब इस्लामी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 फरवरी है, 11 फरवरी को इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ 1979 में इमाम खुमैनी की क़यादत में। इमाम खुमैनी ने जो बीज बोया था आज वो एक तनावर दरख्त बन गया है। 33 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। इस 33 साल में इस शजर इनकलाब को ढाने के लिए, नाबूद करने के लिए, इसकी जड़ों को खुश करने के लिए, इसकी जड़ों को उखेड़ने के लिए दुश्मन ने हर किस्म की साजिश, हरबे और चाल को अपनाया लेकिन उसकी हर साजिश, उसका हर मंसूबा, उसकी हर चाल नाकाम रही और वो नामुराद हुआ। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं, ये तनावर दरख्त ही बना बल्कि इसकी तनवीरें, इस खुर्शीद इनकलाब की तनवीरें पूरी दुनिया में फैलीं। और अगर आज आपको इस्लामी दुनिया में अगर ये जो तहरुक व बेदारी नज़र आ रही है, फ़लस्तीन में तहरुक व बेदारी नज़र आ रही है, ये दर हकीकत बहार इनकलाब है, बहार इनकलाब इस्लामी है। ये इमाम खुमैनी के लगाए हुए उस शजर इनकलाब की असल में समारात हैं कि जो आज हमें दुनिया में नजर, और सिर्फ इस्लामी दुनिया में नहीं, अरब दुनिया में नहीं बल्कि खुद यूरोप और अमेरिका में जो हमें वॉल स्ट्रीट के नाम से बेदारी नज़र आ रही है। आज जो इमाम खुमैनी ने कहा था कि हम इनकलाब को सादिर करना चाहते हैं, हम इनकलाब को पहुंचाना चाहते हैं, आज वो इनकलाब सरहदों को अबूर करते हुए लोगों के अजहानों तक, लोगों की फिक्रों तक, लोगों के कलमों तक, लोगों के वजूद और कल्ब की गहराइयों में उतर चुका है। लिहाजा आज आपको वॉल स्ट्रीट की जो तहरीक नज़र आती है, आज आपको मिस्र और ट्यूनिस में जो इनकलाब नज़र आ रहा है, जो अवामी तहरीकें नज़र आ रही हैं जो कामयाब हो चुकी हैं या कामयाबी के मनाजिल के करीब हैं या उनमें अभी तूफान उठ रहे हैं, ये सब इमाम खुमैनी के उस इनकलाब का नतीजा है कि इसीलिए रहबर ने कहा ये बहार इनकलाब है, ये इनकलाब की बहार आई है, अब हमें इसके असरात पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इस इनकलाब, अब मुझे नहीं पता कि शायद ही आप में से कोई होगा जिसने इस्लामी इनकलाब के उस ज़माने को अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन बहरहाल ये ज़माना कि जिसमें आपने इमाम खुमैनी को देखा या आप रहबर मुअज़्ज़म को देख रहे हैं, ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी है कि इसको आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है, इस इनकलाब को, इस तमाम इन तमाम चीज़ों को जो आप अपनी आँखों से बिलमुशाहिदा जिनको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, जिनका मुशाहिदा कर रही हैं, देख रही हैं कि किस तरह इनकलाब की बहार आई है, किस तरह पूरी दुनिया में एक तहरुक और बेदारी और एक जोश पाया जाता है, और ये सब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की काविशों और कोशिशों का नतीजा है। और उन इमाम खुमैनी के जिन्होंने ये दावत हक दी लोगों को, ईरान को इस्लामी इनकलाब से नवाजा और पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब को फैलाया, ये इमाम खुमैनी वही हैं कि जो जिनकी 200 किताबों में से जिस किताब की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग की ज़रूरत होती थी वो कौन सी किताब होती थी? मफातिल जनान। सबसे ज़्यादा जिस किताब की बाइंडिंग की ज़रूरत होती थी वो इन्हीं, इस हद तक इमाम खुमैनी मुताला करते थे, दिन के कई अवकात में इमाम खुमैनी कुरान की तिलावत करते थे। ये सब इस बात की दलील है कि इंसान का अपने खुदा से राबता कितना मजबूत है। अगर इंसान खुदा का ना बन सके तो फिर वो किसी का नहीं बन सकता। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह सूरह अहज़ाब में है कि जो लोग अल्लाह के पैगाम की तबलीग करते हैं, वह यख्शौना, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वला यख्शौना अहदन इल्ला अल्लाह, वो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। जो अल्लाह का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, जो अल्लाह से डरता है तो सारी दुनिया उससे डरती है। तो ये मोमिनी के जो इस्लामी इनकलाब लाए, जिन्होंने कामयाब किया, जिन्होंने अफराद साजी की, इमाम खुमैनी दर हकीकत यानी उस दावत पर यकीन था, इन इमाम खुमैनी के रगो पे में खून के जर्रे जर्रे में ये यकीन शामिल था कि खुदा है, कयामत है, मुझे अपने हर हर अमाल का जवाब देना है। लिहाजा फिर उसके लिए इमाम खुमैनी ने अपनी किरदार साजी की, और फिर उस किरदार साजी से मुआशरा साजी और उम्मत साजी, और अब पूरी दुनिया को वो इनकलाब पहुँच रहा है कि इंशाल्लाह, दुआ है कि ये इनकलाब, ये आवाज़ हक, ये सदा इनकलाब इंशाल्लाह इमाम ज़माना के इनकलाब से मुत्तसिल हो, और अलमदार इनकलाब इस्लामी ने हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई इस परचम इनकलाब को इमाम ज़माना के हाथों में दें। खुदावंद आलम से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, और उसके साथ साथ हमें अपने खुदा के रास्ते की जानिब बुलाने के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको समझने, उनके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। आप तमाम ख़्वाहरान को इस बात की तौफीक दे खुदावंद आलम के आप तंजीम में हों, अपने घर में हों, अपने ससुराल में होंगे, इंशाल्लाह खुदा आप सब के नसीब को अच्छा करे, और आप अपने घर की एक इस्लामी सफ़ीर बनकर अपने अपने असल जो घर है आपका वहाँ जाएं, और वहाँ जाकर इस्लाम की दावत को फैलाएं। इसलिए अक्सर देखने में आया है कि शौहर मजहबी नहीं था, बीवी मजहबी थी, लेकिन उस लड़की ने या उस तालिबा ने, उस इस्लामी खौहर ने अपने शौहर को भी अपने रंग में रंग लिया, यानी उस पर इस्लामी सोच दी, दाढ़ी भी रखी, पर्दा पर्दे का और तमाम हलाल हराम का ख्याल भी करने लगा, साहिब खुम्स भी हो गया, हज भी के सकात भी किया। बाज़ औक़ात आया कि नहीं, चूँकि फ़िक्रों में जमूद था, बाज़ औक़ात मदरसे की लड़कियाँ ऐसे वाक़े जहन में आते हैं कि मदरसे में पढ़ा तो उन्होंने, लेकिन वो समझ नहीं सकी उस दावत को, लिहाजा उनके जहनों में, उनके रविश में, उनकी ज़बान में, उनके अखलाक किरदार में एक किस्म का जमूद, सख्ती और ठहराव था। यही वजह है कि वो जिस माशरे में गईं, जिस घर में गईं, जिस ख़ानदान में गईं, उन्होंने वहाँ पर मसाइल पेश किए, क्रिएट किए, और वहाँ पर एक तनाव की सूरत हो गई। तो देखना यह है कि आप किस तरह उस दावत हक को पहुंचाते हैं, उस दावत हक को समझना है, उस पे यकीन लाना है, और उसके तकाज़ों को पूरा करना है। बहरहाल खुदावंद आलम आप सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुदावंद आलम आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल?
साहब आपने फरमाया कि अगर किसी को दावत दी जाए तो पहले उसका जमीना फराहम किया जाए, तो हमें कैसे मालूम होगा कि अभी उस शख्स को कितनी जरूरत है और किस तरह जो है उसे अपनी तरफ दावत दी जाए?
वो अपनी तरफ दावत नहीं देनी है,
खुदा के रास्ते
फरमाते हैं कि हिजबुल्लाह वही है कि जो अल्लाह की तरफ दावत देता है। मरा वही थी, मैं सिर्फ आपके अल्फाज की तस्दीक करना चाह रहा था। मकसद यह है कि छोटी छोटी बातों को मैंने वही कहा कि मराहिल बनाए, स्टेप्स बनाए अपनी तबलीग के, कि देखना ही ये है कि इस शख्स में कितनी वसअत है इस बात को कबूल करने की। एक बात देखें, देखें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर आती है तो उससे सख्त बात बयान करें, अगला हुक्म, अगला कदम करें। इसी तरह आपको अंदाजा होगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बतदरी के जो सामने वाला है वो आपकी बात किस तक कबूल कर सकता है। मुमकिन है वो सुन तो ली, अब आप समझ रहे हैं उसने कबूल कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आपने अगला हुक्म दे दिया, नहीं, वो घर जाएगा, सोचेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा, सवाल पैदा होंगे, शुकु शबात पैदा होंगे, उसको जवाब चाहिए, उसके जहन में किस तरह पर परेशानी है, और जो नेक्स्ट टाइम आए तो आप अगला हुक्म सुनाने से पहले उसके उसी चीज के बारे में सवाल करें, पूछें। कि जनाब डिस्कस कर उससे दोस्ताना माहौल में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जनाब आप हाथ बन के आओ बिल्लाह मैंने शैतान तबीयत की, नहीं मैं आपको नसीहत कर रही हूँ, मैं आपको तबलीग कर रही हूँ, नहीं, दोस्तों में प्यार मोहब्बत से उसको तबलीग करें, उससे पूछें कि भाई जो बात थी कोई मसला तो नहीं हो, सवाल तो नहीं हुआ, क्या हुआ, खुद सवाल क्रिएट करें। एक तरीका ये होता है कुरान में तबलीग के कई अंदाज है, कुरान ने तबलीग का एक अंदाज ये भी, खुद सवाल करें आप। अच्छा अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसा मसला हो जाए तो क्या करना चाहिए, ताकि उसके जहन में ऐसा ऐसा ये चीज बेदार हो, पैदा हो। मुमकिन है कि वो सवाल करने में हिचकिचा रहा हो, शर्मा रहा हो, या किसी और वजह से सवाल नहीं करना चाह रहा, कि वो कह के जनाब सामने वाला मुझे कम इल्म कहेगा या नाकसुल इल्म कहेगा, ज्यादा खुद आप सवाल करें ताकि उसमें थोड़ी सी हिम्मत हो। ये तमाम चीजें हैं कि जो मदद करेंगी आपको कि आप उसके जहन तक अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सकें।
ऐसा
भी
होता है कि बार दफा फिर जो है ना इसी चीज से दूर होने लगता है कि भाई इनसे जब भी बात की जाती है तो ये हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो कैसा,
तो उसके लिए हज्जन बेगम बनने की जरूरत नहीं है। अकबर अजहरी के वाक्य में आपने पढ़ा होगा ना, हज्जन बेगम आई थी सबको लूट के ले गई थी, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो हज्जन बेगम बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से जाए, नॉर्मल अंदर बात करें, कोई इस्तलाहें, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई आन और गैन और तीन सौ ये अदा करने की जरूरत नहीं है, मखारज अदा करने की जरूरत नहीं है पहले मरहले पर, चाहे सीधी सीधी बात करें बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से दोस्तों की तरह गपशप करते हुए। हाँ इस ये तवज्जो है कि आप उसकी वजह से गुनाह तो नहीं कर रहे, आप उसके गुनाह में शामिल हो रहे हैं, वाजे बात। खूब जोर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।